وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عزیزان گرامی سورہ عصر جس کے ذیل میں چند معروضات گزشتہ دنوں سے میں کر رہا ہوں کہ سورہ عصر انسان کے نفع اور نقصان کی باتیں بتا رہا ہے اور نفع اور نقصان کس طرح سے ہوتا ہے، نقصان کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے اور پھر نقصان سے کس طرح بچے رہا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے موضوعات ہیں۔ کلام ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائے بسم اللہ، اصل میں اللہ کے نام سے پہلے بسم اللہ، بسم بنا ہے بسم سے، اور بسم کہتے ہیں بلندی کو، ایسی بلندی جس تک پہنچنے کے لیے انسان کو بلند ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کا نام وہ بلندی ہے کہ جس کو لینے کے لیے انسان پستی سے نکل کر بلندی پر پہنچتا ہے۔ بائے بسم اللہ یعنی بصیر، اللہ بصیر، وہ ہماری ظاہری اور باطنی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ سین سے مراد سمیع، وہ ہماری تیز آواز اور خاموش آوازوں کو سنتا ہے۔ میم بے معنی محسی، وہ ہماری ہر چیز کو حساب کرتا ہے۔ وہ اللہ، شروع کرتا ہوں اس اللہ سے کہ جو میری چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، چاہے میں چھپ کے گناہ کروں چاہے علل اعلان کروں، وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، بصیر۔ میں کسی کی مشکل کو اپنی آواز نکال کے ایجاد کروں یا خاموشی سے کروں، میری اس آواز کو بھی وہ سن رہا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو وہ کاؤنٹ کر رہا ہے اور پھر ایک ویلیویشن دیتا ہے۔ جیسے آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کی رپورٹ ہوتی ہے، اس کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ میل میں یہ ریشو اتنا پایا جائے تو نارمل ہے اور فیمیل میں یہ ریشو پایا جائے۔ تو اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، کہ اگر ذرہ برابر عمل خیر ہے تو خدا اس کی جزا کو، اس کے انعام کو نہیں بھولتا، اور اگر ذرہ برابر عمل بد اس کی زندگی میں ہے تو خداوند عالم اس بدی کا، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے، اس کو اس کی سزا ضرور دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، لہٰذا اس نے اتنا موقع دیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے، ابھی نیکی کو انجام نہ دے، تو فرشتے کو حکم ہے کہ وہ لکھ لے، لیکن بدی کے لیے یہ ہے کہ اس کو پورا پورا 24 گھنٹے کا، شبانہ روز کا، دن و رات کا موقع ملتا ہے کہ شاید یہ پلٹ جائے اور توبہ کر لے، لہٰذا اس کو ابھی نہ لکھو۔ عزیزان گرامی، اس کا رحمت کا دریا زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے، جس طرح سے آسمان میں جب بجلی کڑکتی ہے تو بہت زیادہ نہیں کڑکتی ہے، بہت کم وقت کے لیے کڑکتی ہے، لیکن باران رحمت بہت دیر کے لیے بارش ہوتی۔ تو پروردگار عالم यही चाहता है इंसान को कि वो बुरे कामों को अंजाम ना दे, और जिस मकसद के लिए उसको बनाकर भेजा है उस हदफ और उस मकसद पे वो पूरा उतरे। लिहाजा अपने अंबिया के ज़रिए, आगे की और पीछे की बातों के ज़रिए, कभी गुज़श्ता अच्छे और बुरे बादशाहों के ज़िक्र कुरान में किए, कभी आने वाले वक्त की क़यामत का ज़िक्र किया, ताकि इंसान को मालूम रहे कि इबरत यह है और नतीजा ये हुआ, उनका ये था, उन्होंने ये किया था, उसका नतीजा ये निकला, और अब नतीजा तुम्हारे हाथ। और मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम के इस निज़ाम को अपनी एक छोटी सी हदीस में बयान कर दिया कि इंसान मौत से तो बचना चाहता है, जहन्नम से नहीं, जबकि जहन्नम से बचा जा सकता है मौत से नहीं। इंसान कोशिशें क्या करता है, बिल्डिंग बनाए तो ऐसी के अर्थक्वेक आए तो वो यानी हिल के रह जाए, कुछ हो नहीं। अब हम भी कहते हैं आगे आ जाएं तो लोग हिल के रह जाते हैं और सोचते हैं मौलाना कितनी बार कहें, थोड़ा आगे तशरीफ ले आए कि तो थोड़ा सा मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए मैं अटलांटा से चल के आ गया और आप यहाँ से यहाँ तक, जजा कर, मेरा दिल लगता है आप थोड़ा करीब होते हैं तो इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के एहतमाम कर रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, जबकि वो जानता है कि ये पैसा ही मरने के बाद मिलेगा और कफन में जेब भी नहीं बनती जो रख दिया जाए कि भाई ये मिला था ये ले जाओ, कुछ भी नहीं। लिहाजा मौलाए कायनात ने बयान फरमा दिया कि इंसान मौत से बचना चाहता है, जहन्नम से नहीं, जबकि मौत से नहीं बचा जा सकता, जहन्नम से बचा जा सकता। तो इंसान उस चीज के लिए ट्राई और कोशिश क्यों नहीं करता जिससे बचा जा सकता है, उस चीज से बचा जा सकता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो काम अंजाम दे कि जो उसके लिए बदल। और कुरान मजीद ने कयामत को इस तरह से बयान किया कि कयामत की जितनी भी आयात आई हैं वो सब पास्ट टेंस में आई, कोई भी जो है फ्यूचर टेंस में नहीं आई, जबकि कयामत हमारे नज़दीक फ्यूचर है। बहुत से कहते हैं ना जाने होगी भी या नहीं, समझ रहे ना, ये तो मालूम है एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए इंश्योरेंस ले लेते हैं, कुछ हो सकता है इसी बात पे तो ले लेते हैं, एतबार पे मौत में दे, समझ रहे ना। आपने जहाज़ में सफ़र करने के लिए पैसे, उन्होंने पैसे ले लिए आपसे, उन्होंने एक कागज़ दे दिया, ये नंबर दे दिया, मुमकिन है मना कर दें कि भाई किसने दिए मुझे नहीं मालूम ये नंबर, टिकट तो नहीं होता है ना हाथ में, खाली एक कोड आ जाता है, लेकिन दुनिया एतबार पे चल रही है। तो हमने अपने एतमाद को दुनिया और कंपनियों के साथ तो मजबूत कर लिया है, लेकिन अपने एतमाद को उस अल्लाह की ज़ात से मजबूत नहीं किया जो होना चाहिए, जबकि अल्लाह ने तमाम बंदों को बेउनवाने उबूदियत यकसां रखा है अब्द और माबूद की मंजिल में। अब वो मुकर्रब कौन है, पाकीज़ा कौन है, जालिम कौन है, तो वो खुदा ना करे कि कोई अल्लाह की जो डेफिनेशन है बंदगी है उससे बाहर निकाल दिया जाए, वरना अल्लाह ने चूंकि हम सब का उसका बंद होना इस बात की दलील है कि कोई माबूद है। जब हम सर्किल बनाते हैं प्रकार से, कंपास, कैंपस कहते हैं क्या अंग्रेजी में, प्रकार से जब हम सर्किल बनाते हैं तो सर्किल तो बन जाता है पेंसिल से, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट पे पेंसिल नहीं होती, वो तो एक नेडिल होती है। आदमी को सर्किल तो नज़र आता है लेकिन उसका सेंटर नज़र नहीं आता। अब हम इस बात के लिए बहस करें कि सरकार इसका तो मरकज़ ही पता नहीं कहाँ है, कहा कि इसके मरकज़ की दूरी अपने हर पॉइंट से बराबर हो तभी सर्किल बनता है। तो अब जब सर्किल बन गया तो अब आपको सेंटर पॉइंट की तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है। कायदा यह है कि सर्किल का वजूद ही सेंटर की वजह से, ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर नज़र आए। बाज़ औक़ात जो है ज़रूरत नहीं है कि इंसान को कि वो सब पहचानता है कि मसलन ये सर्किल सही बनना इस बात की दलील है कि हर अब्द का रिश्ता माबूद से बराबर है, अब्दियत में बराबर चल रहा है, और अल्लाह के नज़दीक माल, दौलत, उम्र, रंग, रूप, ये तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह से नज़दीक करने के लिए नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई इंसान की काबिल कबूल मुहिम है, काबिल कबूल कोई डेफिनेशन या डॉक्यूमेंटेशन है, तो वह है कि इंसान साहिब तकवा बन जाए। और तकवा अपनी सादी ज़बान में मैं अक्सर बयान करता हूँ, तकवा कहते हैं ब्रेक को। गाड़ी में ब्रेक होता है ना, मौलवी साहब को एक बहुत ही हाई फाई गाड़ी दे दी जाए, मौलाना लेदर है, ये है, लेट जाओ, सारी चीज़ें हैं, और चलते टाइम कहा जाए हुजूर ज़रा ब्रेक नहीं है इसमें, तो मौलाना खुद भी गए और दूसरे भी गए। तो तकवा उस ब्रेक का नाम है कि जो कंट्रोल रखता है कि कोई भी चीज़, नेक चीज़, अच्छी चीज़ किसी के लिए बुरी साबित ना हो जाए। कोई भी तो कंट्रोलिंग पावर जिसको है कि इंसान इबादतें तो करता रहे लेकिन उनको बचा ना पाए, तो फिर इंसान के फ़ायदे की बात नहीं। लिहाजा तकवा इसलिए कहा गया लअल्लकुम तत्तकून, हर इबादत का नतीजा यह है कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें खालिस बना दे, मुखलिस बना दे। लिहाजा हम उस अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं कि जो बसीर है, जो समी है, जो महसी है, और अल्लाह ने हर चीज़ को कैलकुलेट बनाया है। अश्शम्स वल क़मर बेहुसबान, सूरह रहमान पढ़ते नहीं कि सूरज और चांद सब कैलकुलेटेड, ऐसा नहीं है कि ये जो है बेहिसाब किताब है, ये हज़रत इंसान ही थोड़ा बहुत बेहिसाब है, बकिया हर चीज़ अल्लाह की मखलूक। परिंदों को देखिए, वो टाइम पर उठते हैं, टाइम पर सोते हैं। अब आजकल के मुर्गे 8-10 बजे उठते हैं, वो एक अलग मसला है, पहले सुबह सुबह उठ जाते थे, अब वो भी नाइट रात को जागते हैं, टीवी शो देखते हैं, बहरहाल। लेकिन परिंदों का निज़ाम अल्लाह ने उनको मुतीओ फरमा बरदार बनाया है, सूरज उसी वक्त पे आएगा, चांद उसी वक्त पे आएगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें अश्शम्स वल क़मर बेहुसबान अल्लाह का ये कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद आके मौलाना को मशवरा देते हैं कि मौलाना आप इसको कैलकुलेटेड ईद क्यों नहीं मनवा देते। अल्लाह का वादा है, उसने कहा है कि तुम्हारे लिए मेरी तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे लिए उस वक्त आएगी कि जब मेरा हुक्म आ जाएगा। और तुम्हारे सीधी सीधी सी बात है कि मसला आपको जो है चांद नज़र आ जाए तो आप उन्हें रख लो, आप उसमें कोई हुज्जत की बात नहीं। रहा सवाल कपड़ों का, तो आप अपने दोस्तों के साथ रोज़ नए कपड़े पहनो। अक्सर शिकायतें होती है सरकार हम ईद मना रहे, हम रोज़ा रख रहे होते हैं, हमारे दोस्त अहबाब दूसरे कौम वाले अच्छे अच्छे कपड़े, भाई आपको किसने मना किया अच्छे कपड़े पहनने को, अब भी पहन के निकलिए। लिहाजा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान तमाम चीज़ों के होते हुए भी जो है कहता नहीं हमारे समझ में नहीं आए। एक साहब थे, उनका दोस्त था बहुत अच्छा, तो उनको इत्तला मिली कि उसका जैद का इंतकाल हो गया, जैद नाम था उनका, तो वो रोते हुए उसके घर की तरफ चले कि बड़ा अजीज़ दोस्त था, देखा कि जैद सामने से चला आ रहा है। तो जैद ने जब अपने दोस्त को रोते हुए देखा तो पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, कहा तुम्हारा इंतकाल हो गया इसलिए रो रहा हूँ। तो उसने कहा भाई मैं जिंदा सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ फिर भी रो रहे हो, कहाँ जा रहे हो जल्दी? बोला मैं जल्दी में हूँ इस वक्त। कहा किस बात की? कहा कि ऐसा ना हो जनाजा उठ जाए तुम्हारा और मैं रह जाऊँ। उसने कहा भाई मैं यहाँ हूँ, अभी जनाजे में ताखीर है। तो कहने लगा नहीं, जिसने खबर दी वो बड़ा मोतबर है। ये जब दलील आ गई तो सारे एतबार ख़त्म हो गए। साहब हमारे दोस्तों ने मना लिया, फला दलील, ये दलील, वहाँ मना दिया, ये हो गया, ये कर दिया। तो दलील हाथ कंगन को आरसी क्या, सामने की बातों के लिए इंसान को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब दलील आ गई तो फिर आपके कि साहब इतने मोतबर आदमी ने कहा है तो चांद तो हो ही गया होगा, या मसलन साहब अभी चांद नहीं हुआ है कोई किसी ने नहीं कहा है, भाई जब वो खुद चांद आ गया तो फिर अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है अपने आप को उलझाता चला जाता है, और ये उलझे उलझे सवालों की वजह से सूरह बकरा इतना बड़ा हो गया, वरना हर आदमी को याद हो जाता। सूरह बकरा इसी वजह से बना है कि बार बार पूछते थे ये क्या हुआ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो बाज़ औक़ात एक मरतबा एक साहब ने ख्वाब देखा कि फरिश्ते पूछ रहे हैं क्या नाम है, उसने कहा रहमान तो का सूरह रहमान सुनाओ। प्रचार अटक गया दो चार आयतों के बाद। रब्बे कुमार तो कज़े बांध 31 तो वही सुना देता तो चल जाता काम उसका। और दूसरों से पूछा क्या नंबर है, क्या नाम है, कहा इमरान, कहा आले इमरान सुनाओ। तो कहा जब मेरी बारी आई तो मेरे से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, कहा है तो बकरा लेकिन लोग मुझे कौसर कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो कभी कभी इंसान जो है फरिश्तों से भी खेल लेता है। तो अजीजाने गिरामी, इंसान अल्लाह ने हमें वो अल्लाह, हम उस खुदा की ज़ात को मानते हैं क्योंकि परवरदिगार आलम का जो निज़ाम है और जो निज़ाम इस्लामी हमें मिला है, उस निज़ाम ने हमें जो सिखाया है, अगर रसूल अल्लाह उन 360 बुत नाम के खुदाओं के लिए, खुदा पे तो उनका इत्तेफाक था, मुशरिक इसीलिए वो कहलाते थे कि खुदा को तो एक मानते थे लेकिन उसकी ज़ात में शिर्क करते थे और उसकी सिफात और बुतों को अपना रब मान लिया था, अल्लाह की ज़ात में उनको कोई शक नहीं था, वो कहते हैं अल्लाह एक है लेकिन ये रब है, मालिक ये हैं, ये देवता हैं, ये देते हैं, इसलिए ये रब हैं। इस बात पे अगर रसूल अल्लाह ने भी 360 में एक और बढ़ा दिया होता तो स्कोर बढ़ता घटता तो नहीं, अगर एक खुदा और बनाया होता तो फिर मुशरिकीन मक्का को रसूल अल्लाह से शिकायत क्यों रही, माल दे रहे हैं कि इनको खामोश कर दो, कह रहे हैं ज़मीन दे देंगे खामोश कर दो, अबू तालिब ये तमाम काम करवा दो, अपने भतीजे को खामोश करवा दो। ने ये तो कहा कि मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज रख दें और उससे कहा जाए कि तौहीद का मैं ऐलान ना करूं। तो मसला क्या था जिसकी वजह से कुफार लड़ रहे थे, मुशरिकीन लड़ रहे थे, 360 पहले से थे, एक और बढ़ा देते रसूल अल्लाह। लेकिन रसूल अल्लाह ने ये नहीं किया कि एक अल्लाह को पहचानवाया, पहले डस्टर लिया, ला इलाहा का डस्टर लिया, और जितने भी नाम, जैसे टीचर आता है ना पुराना लिखा हुआ सारा मिटाता पहले, एक प्रोफेसर जब एक लेक्चरर आता है तो अपने से पहले, जैसे मैथमेटिक्स का था पहले पीरियड तो उसको मिटाता है, डस्टर से रेज करता है, फिर उसके बाद वो अपना जो कुछ भी कानून देता है। तो रसूल अल्लाह ने पहले कहा था कि अल्लाह एक है कहो, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले ला इलाहा के डस्टर से सारे बुत मिटा दी और फिर कहा अब मैं जो बता रहा हूँ वो मानो। इस बात पे कुफार मक्का को और मुशरिकीन मक्का को गिरा गुजरा और उनको लगा कि उनकी तिजारत इनके नाम पे जो चल रही थी वो अब ख़त्म होने वाली है। इतने सारे लोग थे, अगर सब अपनी अपनी बातें करते थे लेकिन लोग आ रहे थे जा रहे थे, आखिर क्या वजह थी कि ये रसूल अल्लाह की इस तौहीद के कलमे से घबरा गए, वरना वो तो घबराते नहीं थे किसी से। आप अरब का कल्चर उठा के देखें, वो किसी से नहीं घबराते थे, क्यों? क्योंकि उनका वही हाल था कि एक शख्स से कहा कि भाई अगर एक रोज़ा नहीं रखोगे तो 60 रखने पड़ेंगे, कहा जैसे ये नहीं रख रहा हूँ वैसे वो भी नहीं रखूँगा, वो 60 भी नहीं रखूँगा जैसे ये वाला नहीं रख रहा हूँ। तो वो ज़िद्दी थे, वो किसी से डरते वरते नहीं थे। मसला क्या था कि जो पैगंबर इस्लाम से वो इतने बड़े मुखालिफ बने और आखिरकार उन्होंने आखिरी वक्त तक साथ नहीं, यानी इस्लाम जाहिर में कबूल कर लिया अपनी बात और अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी साख और अपनी बात को बचाने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उनको डर क्या था। एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ, एक नवाब साहब थे, तो नवाबों के यहाँ खादिमा होती हैं, आबा व अजदाद से चली आती हैं। तो नवाब साहब के घर में एक बहुत ज़ईफ़ा खादिमा थी जो उनके दादा के ज़माने से नौकरी कर रही। तो नवाब साहब ने कहा देखिए अम्मा, बाप बहुत उम्र बड़ी हो गई है आपकी, अब अच्छा नहीं लगता आप काम करती हैं, लिहाजा कहा बेटा हम कहाँ जाएंगे नौकरी छोड़ के इस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ काम करती रही, आप यहाँ रहिए, खाना पीना रहना सब आपका, हमारी जिम्मेदारी, और आप यहाँ रहती रहिए, आपको कोई नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। तो कहा फिर हम क्या करें। तो उनका जो है बिस्तरा दहलीज पे, जो पहले होती थी दहलीज, आदमी आके बैठता था थोड़ी देर पहले, उसमें उनका बिस्तरा लगवा दिया गया। वो बेचारी बीमार हो गई, बीमार हुई तो वो नवाब साहब मिलने गए, एक दिन इत्तला मिली कि उनका इंतकाल हो गया। तो नवाब साहब बड़े रोए, हमने कहा भाई बहुत पुरानी थी, गोद में खिलाया था, दादा के ज़माने की थी, बहुत रोए बहुत रोए, खामोशी ना हो। लोगों ने कहा सरकार अब बहुत ज़्यादा ना करो, आपकी शख्सियत पामाल हो रही है, आखिर बुढ़िया थी, इसके दिन थे, मिट्टी नेक लग गई, आप जाने दो, क्यों रो रहे हो। फिर भी नवाब साहब खामोश नहीं हो। कहा आखिर क्या बात है, ऐसी ऐसी हज़ार ज़ईफ़ाएँ आप पे कुर्बान हुजूर, ऐसी खादिमाएँ कुर्बान, आप इन पे क्यों रो रहे हैं। कहा मैं उसके लिए थोड़ी रो रहा हूँ, तो कहा फिर किसके लिए रो रहे हैं? कहा मलकुल मौत ने मेरी दहलीज देख ली है, मलकुल मौत ने मेरी दहलीज देख लिया, वो वहां आया है, बंदर भी आ जाएगा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो मुशरिकीन मक्का को ये मसला नहीं था कि कोई एक खुदा का इजाफा कर रहा है, मुशरिकीन मक्का को पता था कि इसकी सच्चाई में कितना दम है कि पैगंबर इस्लाम जिस सच्ची नियत से खुदा का इकरार करा रहे थे और साथ ही साथ सोशल वर्क कर रहे थे, इंसानों को गुरूर की पहाड़ी से नीचे लाना, जलालत की खाई से निकालना, ये पैगंबर इस्लाम का कमाल था। मैं आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज कर चुका हूं, और वो देख रहे थे कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इस्लाम ने, ईमान ने, सच्चाई ने, हक परस्ती ने, हक सतीजी ने रास्ता देख लिया है, अब धीरे धीरे ये हमारा बिस्तर बिसात समेटने वाले हैं। लिहाजा दीन मुबीन इस्लाम वजूद में आया और पैगंबर इस्लाम ने उसकी तालीमात को देना शुरू किया। फ़मन यअमल मिसक़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसक़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा के जरिए लोगों को ये बात समझानी शुरू की कि देखो ये उस इस्लाम को मैं लाया हूँ, उस ईमान को लेकर आया हूँ कि जो आपके लिए ज़र्रा बराबर अमल नेक की जजा भी देता है और ज़र्रा बराबर अमल बद की सज़ा भी देता है। लिहाजा लोगों को उसकी तरफ बुलाया और पैगंबर इस्लाम ने जो इस्लाम में जो तीन खसूसियात थी जो पेश की, जो इससे पहले के अदियान में लोगों ने आने नहीं दी थी, एक तो दुरुस्त फहमी, दीन को सही समझना। पैगंबर इस्लाम ने खाली एक कानून पेश नहीं कर दिया था बल्कि उस कानून को सही समझने के लिए अंदाज में कि इस्लाम फहमी, इस्लाम को अंडरस्टैंड करना कि बग़ैर अंडरस्टैंड किए हुआ इस्लाम बड़ा कमज़ोर होता है। लिहाजा पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की स्टडी को अपने खुतबात में, अपनी सीरत में ज़र्रा बराबर जुदा होने नहीं दिया। जो बात आप मुंह से निकालते थे उसको अमली जामा पहनाते थे। लोगों के साथ एहसान करना, नेकी करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को ऑर्डर दे दिया कि भाइयों लोगों की मदद किया करो, बल्कि खुद मदद किया करते थे, खुद जाके लोगों के हाल अहवाल पूछते थे और लोगों को ये बताना शुरू कर दिया था कि इस्लाम लड़ाई झगड़े का नाम नहीं है बल्कि दूसरे मजहबों का एहतराम करने का भी नाम है कि जहां तक तुम हमारे अकायद को पायमाल नहीं करोगे हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिहाजा असीर होने वाले लोगों के राइट्स बनाए, उसरा के, प्रिजनर्स ऑफ वार के राइट्स बनाए, रसूल अल्लाह ने बयान किए, गुलामों के राइट्स बनाए, क्योंकि गुलाम एकदम खत्म नहीं किए जा सकते थे उस जमाने में, क्योंकि लोगों की फैसिलिटीज में शुमार होते थे। अगर मैं आपसे आऊं आने के बाद कहूं कि आप ये जो घर रह रहे हैं ये सारे घर आपके बेकार हैं, जायज नहीं है आपका रहना, आप ये गाड़ी घर सब बेच दीजिए और मेरे साथ टेंट अराफात की तरह मैदान में टेंट लगा के रहिए, ना पढ़ाई की जरूरत है ना कुछ है, सिर्फ मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात को कौन सुनेगा? पैगंबर इस्लाम ने एक फैसिलिटी को कानून दिया, फैसिलिटी को कानून दिया, जो लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे उसको इज्जत देना शुरू की और लोगों को समझाया कि देखो ये बेटियां तुम्हें अल्लाह की तरफ से अमानत है। कहा कि हम कब तक इनकी जिल्लत खारी उठाएंगे? कहा नहीं, अल्लाह ने इनको दूसरे घर जाना और इज्जत और शरफ के साथ जाने का हुक्म दिया है, लिहाजा ये उधर जाएंगी फिर उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाएंगी। लिहाजा जाने गिरामी वो समझते थे कि ये तो घर में बैठने वाली मखलूक है, बेटा पैदा होगा तो वो हमारे साथ जॉब करेगा, काम करेगा, हमारे घर में गल्ला लाएगा, लेकिन बेटी अगर आएगी तो सिवाय पर्दे में बैठने के क्या करेगी? लिहाजा ज़िंदगी भर इसको खिलाना पड़ेगा और बेटे से ज़िंदगी भर हमें अर्निंग होगी। ऐसे ऐसे उसूल कायम किए थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने कहा कि हम तुम्हारी आधी आधी मसले को हल कर देते हैं कि जब ये बच्ची 9 साल की हो जाए, या उस ज़माने में शऊर जो था शरी एतबार से 9 साल का था, जिस्मानी शऊर भी था, बहरहाल ये अपने शोहर के घर जाए, अल्लाह ने अब ये खाने की जिम्मेदारी उसके शोहर पर लगा दी है। ये तमाम की तमाम बातें लॉजिकल वे में जो है लोगों को समझानी शुरू की। और दीन मुबीन इस्लाम का सबसे पहला मरहला इस्लाम फहमी, दीन फहमी, कानून शिनासी पर बना। पैगंबर इस्लाम ने कानून की, कानून साजी को माशरे की ज़रूरतों के एतबार से रखा था और इसको हमेशा अपग्रेड रखने के लिए कहा था। क्यों? क्योंकि ये उसका कानून था कि जो रब्बुल आलमीन था और उसके ज़रिए पहुँचाया जा रहा था, जो रहमतुल आलमीन था, यानी यहां पर आलमीन की बात हो रही थी, यहां अरब की बात नहीं हो रही थी। वो अरब आप उसका लिटरेचर उठा के देख लिए, अरबों का बहुत ज्यादा लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो उसमें शायरी मिलेगी, और शायरी में क्या होगा, या तो ऊंट मिलेगा, या सहरा मिलेगा, या औरतें मिलेंगी, या जुल्फे मिलेंगी, या शराब मिलेगी, इससे ज्यादा उनके पास कोई सोचने का मुकाम नहीं था। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा जो था वो अपने अशार में यही लिखता था कि जो है सहरा की बात करता था, डेजर्ट की, उसके जहन में कोई दूसरी दुनिया का तसव्वुर ही नहीं था। ऐसे माहौल में अगर कोई ये आ जाए कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ हूं, आलमीन की बात करने वाला आ जाए, तो अजीजाने गिरामी वो अरबों को महदूद करने आया था या उनको खुलासा करने आया था, उनकी वसत पहुंचाने आया था। लिहाजा एकदम उनको यह हजम नहीं होता कि वो रब्बुल आलमीन है और ये रहमतुल्लिल आलमीन है। ये आलमीन के लिए रहमत है, ये खाली मदीने के लिए बनाकर नहीं भेजे गए, ये मक्के के लिए बनाकर नहीं भेजे गए। लिहाजा पैगंबर इस्लाम के इस उस पर फहम इस्लाम फहमी कि देखो बात अभी से इसलिए कर रहा हूं कि ये फिक्र तुम्हारी यहां रहने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत से मजहब ऐसे थे अपने वतन में पैदा हुए और वहीं खत्म हो गए, एक नहर के किनारे बने और एक नहर के किनारे खत्म कर दिए गए। लेकिन इस आफाकी दीन के लिए पैगंबर इस्लाम वो कानून पेश कर रहे थे, वो कानून बयान कर रहे थे कि जो इंसान के लिए रखता था। कहते कि फहमे इस्लाम, दुरुस्त फहमे इस्लाम, इस्लाम को समझना नहीं सही समझना, इस्लाम को सही समझना। बाज़ औक़ात इस्लाम को अभी कोई सही नहीं समझा है, जैसा किसी ने बयान किया वैसे ही समझने लग गए। वही बात है कि जब वो पानी का चश्मा जो है, चश्मे का पानी अगर पीली ज़मीन से गुजरा तो रंग पीला हो गया, सब ज़मीन से गुजरा तो सब्ज हो गया, किसी फैक्ट्री ने केमिकल मिला दिए तो उस पानी में, और उसके बाद आप कहें कि क्या ये पीने का पानी है। तो इस्लाम की ये तमाम की तमाम बातें इसमें तब्दीलियां लाई थी, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम को सही समझने का हुक्म दिया था। अकीमुस्सलात के माना सिर्फ ये नहीं है कि हम टाइम अजान हो जाए तो नमाज पढ़ लें, अकीमुस्सलात के माना यह है कि मैं अपने अल्लाह से राबता रहूं, मैं राबते में रहूं, मेरा उससे कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना होने पाए। लानत के माना ये है कि अल्लाह की रहमत से डिस्कनेक्ट हो जाना, लानत के माना ही ये है, यानी मुनक़ता हो जाना अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की हिकमत से मुनक़ता हो जाना। जब ये मानता नहीं है खुदा या तेरा हुक्म नाफरमानी पे नाफरमानी करता है, तो खुदा अपनी रहमत से उसको मुनक़ता कर देता, डिस्कनेक्ट कर देता। वाय हो उस इंसान पर कि जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। लिहाजा इस्लाम को सही समझाने के लिए जो है बात हो रही थी। दूसरा जो मरहला था इस्लाम का, जामियत इस्लाम थी। तमाम अदिमियान के अदियान के दरमियान, तमाम के तमाम दीनों के दरमियान इस्लाम में वो जामियत थी कि जो हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वहां पर गुलामों के लिए भी उसूल बनाए गए थे, वहां पर कनीजों के लिए भी उसूल बनाए गए थे, वहां पर शादीशुदा के लिए भी उसूल बनाए गए थे, वहां गरीब अमीरों के लिए भी उसूल बनाए गए थे। इस्लाम चाहता था कि इंसान साजी करे, इंसान को एक अच्छी मखलूक है, उसको अशरफुल मखलूकात बनाने का जो तसव्वुर जो अल्लाह ने पेश किया था उसको यकीनी जामा पहनाए अपनी तालीमात के जरिए। लिहाजा दीन मुबीन इस्लाम में इतनी वसअतें थीं, वहां पर कमजोरी और कज दिली नहीं थी, कज फिक्री नहीं थी कि अगर कोई हमारे दरमियान गैर मुस्लिम आ गया तो उसको मार डालो, नहीं, बल्कि उसके तमाम आदाब थे। पैगंबर इस्लाम ने कहीं नहीं लिखा कि पैगंबर इस्लाम ने जाने के बाद किसी से ज़बरदस्ती की हो, ला इकराहा फिद्दीन का नारा लगाया कि इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती और कोई जबर नहीं है, हम तुम्हें ये बात बताते हैं, हम तुम्हें ये बात बताते हैं, अगर तुम इस बात को कबूल करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो खुतबात बयान किए उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को वाज़े कर दिया, वाज़े यही किया अपनी गुफ्तगू में। इमाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, मेरे नाना ने तुम्हें क्या नहीं दिए, क्या मैंने नाना के दीन में जो मेरे नाना लेकर आए हैं उस दीन में मैंने कोई तब्दीली कर दी, क्या मैंने हराम को हलाल कर दिया, क्या हलाल को हराम कर दिया, क्या मैंने तुम्हारे निकाह तोड़ दिए, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज्यादतियाँ की, क्या मैंने तुम्हारे घर के माल को बैतुल माल बना दिया, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बदले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो फहरिस्त बयान की, फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूँ कि नूर का मुकाबला जुल्मत से है, मैं जुल्मत के मुकाबले में तुम्हें नूरानी बनाने आया हूँ, मैं रजाइल के मुकाबले में तुम्हें जो है मैं फजीलत देने आया हूँ, तुम्हारी बसीरत को मैं हिमाकत से बदलने आया हूँ, हिमाकत को बसीरत से बदलने आया हूँ। इमाम फरमाते हैं कि मेरे मकतब में, मेरे मदरसे में जहाँ पर जो है इल्म और मारिफत दी जाती है, जहालत नहीं दी जाती है, इस मकतब में जहालत को ख़त्म की जाता है, मारिफत को दिया जाता है, मोहब्बतें ईजाद की जाती हैं, अदावतें बंद की जाती हैं, ख़त्म की जाती हैं, اور امام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام اور اللہ اور رسول کی خدمت کا جذبہ دیا جاتا ہے، خیانت کا جذبہ نہیں دیا جاتا. اس کے بعد امام نے فرمایا میں ہدایت لے کے آیا ہوں تاکہ تم ضلالت کی گمراہی میں نہ چلے جاؤ. امام نے فرمایا میں سعادت مند بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں شقاوت بھرا دل دینا نہیں چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، اتنی باتیں سننے کے بعد بھی امام نے فرمایا راستہ تمہارے سامنے ہے، قرآن کی آیت واضح، اما ہدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستے دکھا دیے ہیں، ایک کھلا ہوا راستہ ہے، دوسرا گمراہ راستہ ہے، اب جب تمہاری ہے. عزیزان گرامی، آج کا انسان کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنے بڑے کارنامے کر دیے، نور کے مقابلے میں ظالموں کی طرف جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادے. کیسے ممکن ہے شہزادے کی جنگ؟ کیسے شہزادے کی جنگ ہو سکتی ہے؟ اصلاً ان کو لیاقت نہیں ہے یزید کو. آج جو طرفدار پیدا ہو گئے ہیں، میرے اہل سنت برادران سے بھی اس بات کی درخواست ہے کہ نواسۂ رسول سے زیادہ محبت ہمیں ایک حکمران سے ہو سکتی ہے؟ وہ رسول جس نے کبھی تاج انبیاء تھا، وہ تمام انبیاء کا سردار تھا، کیا کبھی رسول اللہ کو تاج پہنے ہوئے دیکھا؟ جو تمام کی تمام چیزیں پیغمبر اسلام کی سنت میں پائی جا رہی تھی وہ بالکل بدل دی گئی تھی اموی حکومت میں، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم جو ہے. تیسرا جو مرحلہ بیان فرمانا چاہتے تھے کہ ہندسہ صحیح، کہ اسلام جب اختیار کیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ حالات دیکھتے ہی بدل دیا جائے. اسلام حالات بدلتے ہی بدل دیا جائے ایسا نہیں ہے، جو اصول اس کے ہیں وہ اس کے مرنے تک. لہذا معیار یہ بنایا کہ ایمان لانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، ایمان پہ مرنا فضیلت کی بات ہے. ایک انسان ایمان لے آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فضیلت، یعنی فضیلت کیا ہوتی تھی اس زمانے کی عرب کی، آپ جہالت سنیں گے، فضیلت کیا ہوتی تھی؟ فضیلت یہ ہوتی تھی کہا کہ اگر میں مر جاؤں یا کوئی میں اسلام کے خلاف کوئی بات کر لوں تو میری گردن جب کاٹو مسلمانوں تو تھوڑی لمبی کاٹنا. بولے کیوں؟ کہا جب سر رکھے جائیں تو میرا سر بلند رہے. سمجھ رہے نا؟ یہ جہالت تھی. یعنی میں ضرور، یہ نہیں کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں. کہا ابھی میں اسلام کا خلاف ہو جاؤں اور تم میری گردن کاٹو، کیونکہ اس زمانے میں بھی ان کے دماغ میں یہی بات تھی کہ گردن کٹنی چاہیے. جو آج کٹ رہی ہیں، جو کاٹ رہے ہیں، وہ اسلام وہی تھا جو ابو سفیان کا اسلام تھا. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میری گردن کاٹو تو تھوڑی نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب سر بھی رکھے جائیں تو میں سب کا سردار رہوں. یعنی یہ چیزیں تھیں. اور عرب کی آپ اس میں پڑھیے گا بغض و حسد، حسد کا اتنا. تاریخ لکھتی ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا نیک تھا، غریب تھا، ایک بھائی بڑا امیر تھا لیکن بڑا بدکردار تھا. تو لوگ، وہ سمجھتا تھا کہ پیسے کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کریں، لیکن عادت کے اعتبار سے اس سے چھوٹے بھائی سے محبت کرتے تھے. تو اس کی محبت اور حبیب قلوب ہونے کی بنیاد پر اپنے چھوٹے بھائی سے حسد کرتا تھا. ایک دن اپنے غلام کو بلا کر کہتا ہے آخر میں کیا کروں جس کی وجہ سے جو ہے میرے بھائی کو لوگ برا سمجھیں اور مجھے اچھا سمجھیں. تو اس نے کہا سرکار یہ تو آپ ہی سوچیے، میں کیا سوچوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، جو کہو گے ہاں میں ہاں کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ اس علاقے میں اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کو بہت، قاتل کو بہت برا مانتے ہیں. تو قتل اگر کسی کا کر دیتا ہے تو اس کو بڑا برا مانتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، کسی کا قتل کر کے اس کے گھر پہ پھینک دو تاکہ لوگ اس سے رسوا، اس کو رسوا کریں، ذلیل کریں اور اس کی محبت ختم ہو جائے. تو اس نے کہا سرکار بھائی کو مارنے سے زیادہ نفرت پیدا ہوگی، لہٰذا میں اس سے کہتا ہوں آپ کو مار کے اس کے گھر ڈال دیتا ہوں. آپ کو مار کے آپ کا جنازہ اس کے گھر ڈالتے ہیں تو دو منٹ لگیں گے اس کو رسوا ہونے. کہنے لگا ہاں صحیح، یہ صحیح کہا. تو اس نے کہا تمہارا حق یہی ہے کہ اس نیک انسان کو ذلیل کرنے کے لیے وہ حرکت ہے کہ ایک انسان کو مارا جائے. اور یہی ہوا، تاریخ لکھ رہی ہے اس غلام نے اس کا سر کاٹ دیا اور اس کے گھر پہ پھینکنا تھوڑی تھا اس کو، کہ مرنے کے بعد کیا ان کو کیا معلوم کہ یہ جو ہے انشورنس پیسہ دے گا یا نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں ہوا ان کا مسئلہ. تو عزیزان گرامی، وہ تاریخ عرب جہاں پر یہ جہالتیں پائی جاتی ہوں، وہ چیزیں کہ جہاں پر انسان جو ہے خدا اور رسول کے مقابلے میں آ رہا ہو. امام حسین نے اتنی فہرستیں گنا دی، اس کے باوجود جو ہے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا میں جانتا ہوں تمہیں اچھائی کیوں اچھی نہیں لگتی، تم اچھائی کے مقابلے میں برائی کو کیوں چنتے ہو؟ کیونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام مال بھرا ہوا ہے. عزیزان گرامی، یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. ہم اپنے بچوں کے رزق، ہم اپنے بچوں کے کھانے پینے میں واقعی بڑی احتیاط کریں، واقعاً بڑی احتیاط کریں. بہت سے لوگ جب میں شروع میں آیا تھا تو مجھ سے کہنے لگے مولانا यहाँ लोगों बच्चों को हराम हलाल मत बताना, वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मैंने कहा भाई ये क्या बात है हराम हलाल। तो मैंने कहा चलो मैं वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ का एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई एक्सपायर डेट की चॉकलेट बेच सकता है? कहने लगे नहीं बेच सकता, बड़ा जुर्म है। मैंने कहा आप अपने बच्चे को खाने देंगे अगर दूंगा तो? बोला अरे कैसी बातें करते हैं, ये तो उसको हर्ट करता है, वो हलाक कर देगा। तो मैंने कहा बस अल्लाह का हराम तो हर्ट नहीं करता और दुनिया की बनाई हुई चॉकलेट हर्ट कर जाएगी, समझ रहे ना? ये दुनिया जो अजीब व गरीब है, पहले लिखा आता था एक्सपायर डेट, अब वो इसको बुरा भी नहीं कहते, एक्सपायर भी नहीं कहते, कहते बेस्ट बिफोर। मार्केटिंग को मेरे सुने तो वाकई ना अजीब अंदाज है, पहले कहते थे बेस्ट बिफोर, यानी अब खराब होने के बाद भी बेस्ट है, वो बेस्ट बिफोर, पहले होता था एक्सपायर, एक्सपायर डेट। अज़ाने ग्रामी ये दुनिया अपने हिसाब से चलाना चाहती है। अल मोमिनो कैयज, अल कैयज ओ मन अदबा नफ्सहू, मोमिन कैयज होता है और कैयज वो होता है कि जो अपने नफ्स को मुअद्दब कर ले, जो अपने नफ्स को मुअद्दब कर ले, जन्नत को हासिल कर ले। अल अक्लो उबेदा बहिर रहमान वक्त सबुल जिनान, अक्ल वही है कि जिसके ज़रिए रहमान की इबादत की जाए और उसके बदले में इनाम में जन्नत पाई जाए। अक्ल उसको नहीं कहते, और फिर लोग मुकाबला करते हैं, जबकि रसूल अल्लाह ने फरमाया अल इल्मो इल्मान, इल्मुल अबदान व इल्मुल अदियान। इल्म भी दो तरह के हैं, एक बदन का इल्म है और एक दीन का इल्म है। यानी इस इल्म को जो बयान फरमाया है, तो अज़ीज़ाने गिरामी आप हर इंसान अगर हम तालीमात रसूल अल्लाह पे चलते हैं तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आखिरत हमारी क्योंकि नतीजा हमारे हाथ में नहीं, नतीजा अल्लाह के हाथ में। यहाँ पर सबसे पहले रिवार्ड की बात की जाती है, अल्लाह देगा, ज़रूर रिवार्ड देगा। हज़रत मूसा का ज़माना है, एक शख्स ने जो है 300 साल इबादत की, कहने लगा शैतान आया, कहने लगा तुम चेक तो कर लो ये सही वादा है या नहीं, तुम तो इबादत किए जा रहे हो, थोड़ा बहुत ही थोड़े बहुत जो है कूपन कैश कर लो, 300 साल की इबादत। मूसा से कहने लगे मूसा आज से इबादत नहीं करूँगा, मेरी जो पिछली है उसका हिसाब करवाओ पहले। मूसा ने कहा भाई अल्लाह का वादा है, वो देगा, वो मना नहीं करता, वो सादिकुल वाद है। कहने लगा नहीं 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 ये सारी बातें जो हैं मौलवियों वाली हैं, ये नहीं करो तुम, सही बताओ हकीकत क्या है, मुझे पहले इसका पेमेंट करवाओ उसके बाद बात होगी। मूसा ने कहा भाई ठीक है मैं टूर पर जाऊँगा तो बात करूँगा। जब टूर पर पहुँचे कहा खुदाया वो तो इबादत का सिला मांग रहा है, तो कहा उससे कह दो उस सहरा में चला जाए, वहाँ हम उसको इसका सिला दे दें। अब ये शख्स था जोश में, इसने कहा कि अब इबादत इबादत नहीं करें, अब तो पहले 300 साल का हिसाब करना है। बेचारा चक्कर में आ गया हज़रत मूसा के और सहरा में चला गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उसका जानवर मर गया। वापस जाए तो जाने का रास्ता नहीं, और कहा कि लेना तो है तो इधर का है तो मिलेगा। वो बेचारा चला गया, आगे बढ़ा आगे बढ़ा, इतना बेहाल हो गया कि ज़मीन पर गिर गया, और प्यास से शिद्दत प्यास से कि अगर पानी थोड़ी देर और ना मिले तो वो मर जाए। क्या देखा कि सामने से एक सवार चला आ रहा है, उसके ऊँट पे एक मशक लटकी हुई है, तो उसने इशारे से कहा पानी। तो कहने लगा भाई मैं तो इसकी तिजारत करता हूँ। कहा पानी चाहिए? कहाँ? कहा कि कितने का है, मेरा माल ले लो। कहा माल वाल वाला नहीं हूँ तो उससे तो मैं तुमसे ज़्यादा, अगर तुम मांग रहे हो माल के बावजूद तो फिर क्या अमीर हो तुम। तो कहा फिर क्या मसला है? कहा मुझे एक कूजे के बदले में, मेरी कीमत है एक कूजे के बदले में 150 साल की इबादत का सवाब। उसने कहा कैसी बातें करते हो एक कूजे में? बोला ठीक है मैं चल रहा हूँ, अगर पी लोगे तो बच जाओगे तो कुछ तो मिलेगा तुम्हें। उसने कहा ये सही कह रहा है, अगर बच गया तो मिलूंगा ना कुछ। लिहाजा उसने 150 साल की इबादत का सवाब उसके नाम कर दिया। एक पीने के बाद और प्यास बढ़ की। उसने कहा भाई एक और दे दे। कहा कि ऐसा नहीं है, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री नहीं है, यहाँ पे तो रेट टू रेट काम है, 150 का था पहला 150 और अब ये 150। तो कहा कि फिर मेरे पास क्या बचेगा? कहा तुम्हारी जान तो बचेगी, फिर कर लेना इबादत, वो तो दे देगा। तो उसने कहा चलो 150 साल की भी इबादत। जब उसने 150 साल की इबादत भी दे दी तो आने वाले ने कहा कि खुदा ने आज तेरा हिसाब कर दिया है, तूने उसके कूजे नहीं गिने, उसने बगैर मांगे कितने कूजे पानी के दिए। जब तू इस मरहले में आया कि अपनी इबादत की तिजारत के, तो तुझे 2 कूजों से ज़्यादा तेरी इबादत की हैसियत नहीं है। लेकिन उस रहमान और रहीम ने कभी तेरे साथ शकावत नहीं, कभी जुल्म नहीं किया, बगैर मांगे देता रहा। हम उन चीज़ों को तो काउंट ही नहीं करते जो बगैर मांगे मिलती है। रात को सो जाएं सुबह ना उठें, क्या हो? कुछ नहीं, लेकिन सुबह उठना, कहना चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मुझे वापस ताज़ा दम दिया। एक के बाद एक नेमतें मिल रही हैं, लेकिन उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है, उसको कोई गिनी नहीं रहा है। दो मिनट में, अरे मौलाना जितना आप इबादत करते हैं उतना अल्लाह हमारे हाल बुरे करता जाता है, ये नतीजा है। हम इसीलिए जो है, आपने सुना होगा सब्र जमील, एक वर्ड है सब्र जमील कहते हैं ना आपको, अल्लाह सब्र जमील, सब्र जमील उस सब्र को कहते हैं कि ये बर्दाश्त बगैर किसी सलाह के करना, कोई शिकवा ना करना इसके पीछे। आप सब्र तो मजबूरी में भी करेंगे, लेकिन अगर शिकवा साथ में है तो फिर उस सब्र का सवाब नहीं। लिहाजा सब्र जमील कहा जाता है कि खुदा आपको सब्र जमील दे, ऐसा सब्र कि आप अल्लाह से शिकवा ना करें। लेकिन इंसान तो शिकवा एक के बाद एक के बाद एक शिकवे करता है। लिहाजा इस्लाम दीन मुबीन, इस्लाम जामियत पसंद मज़हब था और इसमें तमाम की तमाम चीज़ें जामे थी, और पैगंबर इस्लाम ने इस दीन मुबीन इस्लाम को सही एंगल से समझने और सही एंगल से उसको निशान देने के लिए बयान किया था, ताकि इस तीन बातों में खुलासा इस्लाम है। अगर इंसान जो है इस बात को मान ले, इस बात को इंसान मान ले तो फिर ख़त्म हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, अली वलीउल्लाह का है। किस लिए? क्योंकि अल्लाह के कानून को कबूल कर ले, अल्लाह के नबी के अमल को कबूल कर ले और अली की विलायत को कबूल कर ले, ताकि सुबह कयामत तक उसकी इमामत बाकी रहे और वो उनकी हिदायत करते रहें। तो ऐज़ाने गिरामी, ये तो बहुत अच्छा सौदा है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो इस सौदे को ज़रूर करेगा, क्योंकि ये सौदा बहुत फ़ायदे का है। लेकिन इंसान अपनी इबादतों को, कहीं 300 साल की इबादत को दो कूजे में बेचता है, कहीं दिन भर बड़े नेक काम किए शाम को गीबत के मुकाबले बेच देता है, बहुत सी अच्छी बातें की किसी भाई के हसद में अपनी इबादत को बेच देता है। यानी ये तो इंसान सोचता ही नहीं, वो सोचता है जो कर लिया उसका तो मिलना ही, जो कुछ मेहनत कर ली वो तो मिलना ही है, मिलना है, लेकिन कैसा मिलना है? ऐज़ाने गिरामी, हमारा काम वजीफे को अंजाम देना है और नतीजा अल्लाह के हाथ में है कि वो क्या करेगा। फौरन एक नमाज पढ़ी और दूसरे पे शुरू कि मियाँ आप क्या करते हो, आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते हो। ना जाने अल्लाह से उसका क्या रबता है, पढ़नी चाहिए, वाकई पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए। और बिलखसूस रजा सिरसवी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, एक सलवार पढ़े तो मैं आपको सुनाऊँ। जबान हाल से कहती हैं मजलिसें मस्जिदें आओ, जबान हाल से कहती हैं मस्जिदें आओ, सफ़े संवारो शहे मशरक़ैन वाले हो। सवाल ये नहीं गाफिल हो क्यों नमाजों से, सवाल ये है कि तुम तो हुसैन वाले हो, तुम तो हुसैन वाले हो। हमसे इमाम हुसैन सवाल करेंगे कि क्या कोई हमारे यहाँ इश्क में कोई कमी नहीं है अल्लाह से, और इंशाल्लाह हम जिंदाबाद। हम इस बात का वाकई शुक्र अदा करते हैं कि हमें पैरुकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाया, हमें अल्लाह ने सआदत मंद रहबरों के साथ रखा, और वाकई हम बड़े अमीर हैं। हमारे यहाँ फ़कीरों का कोई सिलसिला नहीं, अमीरों का सिलसिला है। और फ़कीर अल्लाह ने नाम भी बड़ा अजीब सा बनाया, फ़क्र। फ़क्र जो है कहते हैं रीढ़ की हड्डी के मोहरे को कहते हैं, बैकबोन के उस पार्ट को फ़क्र कहते हैं। एक फ़क्र को, एक मोहरे को फ़क्र कहते हैं और बहुत सारे हों तो फ़कीर। तो अगर किसी का एक मोहरा टूट जाए तो वो बैठ नहीं सकता, जिसके सारे टूट जाए तो वो क्या करेगा? तो मालूम यह हुआ कि मुकाबले में खड़ा हो ही नहीं सकता कोई। अल्लाह ने कह दिया अंतुमुल फ़करा, तुम फ़कीर हो, तुम मेरे मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमें उन लोगों के हवाले किया कि जो सरदार हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं, हमारा रसूल सैयदुल अंबिया है, हमारा मौला सैयदुल औलिया है, हमारी बीबी सैयदतुन निसाए आलमीन है, हमारे इमाम सैयदए शबाब अहले जन्ना है। तो हम तो सरदारों के दरमियान पल रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मकतब को जो पैगंबर इस्लाम ने पेश किया था, उस तसव्वुर को लोगों ने मिटा दिया था, उसमें तहरीफ कर दी थी, इस्लाम को सही माना में लोग नहीं समझ रहे थे। अगर समझते तो मजाल नहीं थी कि दरवाज़ा सैयदा पे बंद हो जाए, मजाल नहीं थी कि किसी दरवाजे सैयदा पे आग लगा दी जाए, मजाल नहीं थी कि अली मुर्तज़ा के साथ गुस्ताखियाँ की जाएँ। ये तमाम की तमाम बातें इसलिए थी क्योंकि अर्जिश दीन ख़त्म कर दी गई थी, दीन का रुख ऐसा मोड़ दिया था कि सिर्फ और सिर्फ वाबस्ता बे हुकूमत हो गया था। लिहाजा सच्चा कहते थे अहले कूफा, यही कहते थे कि मौला हमारे दिल तो आपके साथ है लेकिन तलवार यजीद के साथ। ऐज़ाने गिरामी, कभी ऐसा भी होता है कि दिल कुछ कहे और हाथ पैर कुछ कहें। हाथ पैर कुछ कहें, दिल कुछ कहे, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा लोग कहते थे कि हुसैन हम आपसे मोहब्बत करें, इमाम ने फरमा दिया नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे पेटों में हराम माल भरा हुआ है, लिहाजा तुम इसलिए मेरे मुकाबले में आ गए, वरना हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया, हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया कोई बता दे। अक्सर तो उनमें वो लोग थे कि जिनको हुसैन ने आज़ाद करवाया था, अक्सर लोग वो थे, अक्सर वो लोग थे जो जख्मी हो गए थे तो हुसैन ने उनको मरहम पट्टी की, अक्सरियत ये थी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फख्र किया अपने चाहने वाले अंसार पे, और अपने नाना से भी कहा कि नाना जो सहाबा मुझे मिले वो ना आपको मिले, ना बाबा को मिले, ना हसन मुश्तबा को मिले। पापा मैं, नाना मैं इसमें बड़ा नसीब वाला हूँ कि मुझे जितने मिले ऐसे मिले कि वताबतिल अर्दिल लतीफ़ी हा दुफिनतुम, कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको एक आशूर तक, वो लोग मारिफत के उस मुकाम पे थे कि जो है फिर जान जान नहीं थी उनके नज़दीक। करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, मरने वाले मौत को ही जिंदगी कहने लगे, मरने वाले मौत को कि या रसूल अपना रसूल अल्लाह 70 बार अगर अल्लाह हमें मौत दे, जिंदगी दे, और हम 70 बार इसको आप पे कुर्बान कर दें। ऐज़ाने गिरामी, दीन मुबीन इस्लाम में इल्म की बड़ी जायगा है, बड़ा मुकाम है, क्योंकि ये फहम का मकाम है, ये इस्लाम फहम का है, सच सच सही तरीके से अंडरस्टैंड करने का नाम है। जामियत पाई जाती है इसमें, इसमें तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, इसका डायरेक्शन बहुत अच्छी तरफ है, क्योंकि इसको डायरेक्शन देने वाले मासूम हैं, उनके यहाँ खता का इम्कान नहीं है, उनके यहाँ पर किसी से डरने का मुकाम नहीं है कि खौफ से कुछ कह दिया, उनके यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो महदूद है, खजाने कुदरत उनकी ठोकर में बिखरे हुए, वो अपनी ज़िंदगी को इसलिए गुजार रहे थे सादा ताकि एक आम गरीब इस बात का शिकवा ना रखे। ऐज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्तों में जो जिनका नाम लिखा जाता है, उन दोस्तों में जो बचपन से, क्योंकि हर तरह से जानता है, कोई मुंह हुआ नया नया दोस्त होता उसमें, और जो बचपन से साथ रहा है उसमें बड़ा फ़र्क होता है, बड़ा फ़र्क होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बचपन के दोस्त थे जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वैसे तो सब मोहब्बत करते थे, लेकिन तारीख ने जो लिखा है उनमें एक जनाब जॉन जो अबू ज़र गफ्फारी के ग़ुलाम थे, वो ना हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले खाना खाते थे, ना उनसे पहले पानी पीते थे, और वो कहते थे आका, चूँकि इमाम हुसैन अक्सर रोज़ा रखते थे, कहते हैं आका जब आप अफ्तार करेंगे तब मैं भी खाऊं। जनाब जॉन हमेशा इमाम की बची हुई रोटी खाते थे। यह फजीलत है कि अरब का एक गुलाम जो अबू ज़र गफ़ारी ने लिया और उसके बाद अली मुर्तज़ा को दिया, इमाम हसन मुश्तबा की खिदमत में आया, और फिर उसके बाद इमाम हुसैन, यानी ये शरफ़ एक मासूम से मुलाकात का, एक लम्हे का शरफ़ बहुत बड़ा होता है। चेबे रसे हज़रत अमीर की खिदमत, हज़रत हसन मुश्तबा की खिदमत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत, फिर दीन मुबीन इस्लाम की खिदमत, और जान देने के बाद जो है खुदा के दीन की खिदमत, और अब भी जो है मोमिनीन की खिदमत करते हैं। अगर कोई बेरोज़गार हो जाए जनाब जॉन का वसीला दे दे तो कभी उसका रोज़गार हट नहीं सकता। जनाब जॉन की अगर वो कहे कि मैं बेरोज़गार हूँ हज़रत जॉन, मुझे रोज़गार चाहिए, तो कभी नहीं टालते बात को, आप आज़मा के देख लीजिए। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर सन 5 हिजरी में पैदा हुए, रबीउल अव्वल में आपकी विलादत है, और 5 हिजरी में आप पैदा हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है 4 या 3 हिजरी, तो बहरहाल यह बराबर कैसे थे या एक साल छोटे थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी बेपनाह मोहब्बत करते थे जनाब हबीब इब्ने हबीब अपने बाबा मज़ाहिर के साथ मस्जिद नबवी में जाते थे, कहते थे कि मुझे वहाँ हुसैन से मुलाकात होगी, और इमाम हुसैन से बेपनाह, और जनाब रसूल अल्लाह आप जनाब मज़ाहिर जो हबीब के वालिद थे उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। रसूल अल्लाह ने तारीख नहीं लिखती कि कभी किसी अम्र को उनके लिए टाला हो, उनकी दावत को टाला हो। लिहाजा एक मरतबा दावत की, आप सुनते आए हैं कि जनाब मज़ाहिर ने दावत की, रसूल या रसूल अल्लाह शाम को मेरे आज मेरे घर पे आप खाना तनावल फरमाइएगा, रसूल अल्लाह ने कबूल कर लिया। हबीब ने पूछा क्या आपने हुसैन को भी बुलाया, कहा नहीं मैंने हुसैन को तो नहीं बोल, रसूल अल्लाह से बात हुई, कहा कि बाबा आप जाइए और हुसैन को भी बुलाइए। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों को भी मधु किया, और जनाब हबीब इंतज़ार में, शौक़ इंतज़ार में बाम पर चढ़ गए, कोठे पर चढ़ गए, घर की छत पर चले गए और अपने दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा इमाम आएगा, मेरा दोस्त आएगा, हुसैन आएंगे। इसी शौक में आप छत से गिर जाते हैं और आपका इंतकाल हो जाता है। जनाब मज़ाहिर ने कहा कि खुदा का रसूल, खुदा का हबीब मेरा मेहमान है, लिहाजा मेरे घर में अगर ये कोहराम बरपा होगा तो वो खाना नहीं खा पाएंगे, लिहाजा बीवी से कहा कि तुम खामोश रहना, और बच्चे के जनाजे को एक कोने में कपड़ा ढक के छिपा दिया। और उसके बाद जब रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए, दस्तरखान पहन किया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते, शहजादे खाना बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा नाना मेरा जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा जिसने, मैं नहीं खाऊँ, मुझे हबीब चाहिए। इतना सुनना था कि जनाब मज़ाहिर से रहा ना गया, आँखों में आंसू आ गए। रसूल अल्लाह ने गिरिया का सबब दरियाफ्त किया तो कहा कि आका शहजादे के इंतज़ार में वो बड़ा शौक में था और कोठे पर चढ़ा हुआ था, वहाँ से गिर गया और जा बहक हो गया। मैं नहीं चाहता कि आपका खाना ख़राब हो, लिहाजा मैंने जिस बात को आपसे छुपाया, मैं माजरत चाहता हूँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हुसैन अपने हाथों को बुलंद करके हबीब की ज़िंदगी की दुआ कर दो, मेरे लाडले तेरी दुआ बड़ी कबूल आएगी, और खुदा से कहो कि खुदाया मुझे हबीब चाहिए, मुझे हबीब चाहिए। इमाम ने अपने हाथों को बुलंद किया कि खुदाया मुझे हबीब चाहिए। तारीख लिखती है कि हबीब इब्न मज़ाहिर जो हैं जिंदा हो गए, और जिंदा हो गए, हबीब को लाया गया, इमाम हुसैन ने गले लगाया कि हबीब ऐसा ना करना, मेरा साथ ना छोड़ना। तारीख लिखती है कि जब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को छोड़ा, हबीब ने मदीने को छोड़ा। हबीब कभी भी हुसैन को तना नहीं छोड़ते थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। और यही वजह थी कि हबीब इब्न मज़ाहिर जो है रसूल अल्लाह का ज़माना भी दर किया, हज़रत अमीर के सहाबी भी रहे, इमाम हसन मुश्तबा के सहाबी भी रहे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी सहाबी रहे। ऐज़ाने गिरामी तारीख लिखती है कि जब नरगए आदा में हुसैन घिर गया, शोर मचता था, तबल बजाए जाते थे, ज़ैनब औलिया मकाम का दिल हर तबल पे धड़कने लगता था और कहती थी फिजा क्या बात है। फिजा जाती थी, कहती थी एक लश्कर और हुसैन के मुकाबले में आया है। हर रोज लश्करों के आने की बात, हर रोज लश्करों के आने की बात। तारीख लिखती है कि चार मुहर्रम को कूफे में असलाह बिक रहा था। हबीब के बच्चे ने कहा, बाबा आज कूफे के बाजार में बहुत ज्यादा असलाह बिका है। हबीब बाहर नहीं आना चाहते थे क्योंकि मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद हबीब ने यह तय कर लिया था कि मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कत्ल करूंगा, बदला लूंगा मुस्लिम बिन अकील का। लिहाजा हजरत हबीब ने कूफे को नहीं छोड़ा था। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम को जब भी खबर मिलती थी, दुश्मनों के आने की मिलती थी, एक मरतबा हुसैन के पास आई, भैया क्या आपने भी अपने चाहने वालों को आजमा लिया है? कहा बहन मैंने सबको आजमा, का कोई नहीं जो आपकी नुसरत के लिए आए। एक मरतबा हुसैन ने फरमाया, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, लिहाजा लाओ कलम दवात लाओ। हुसैन ने खत लिखना शुरू किया और फरमाया कि हुसैन गरीब की जानिब से हबीब इब्न मज़ाहिर फकीह को ये खत लिख रहा हूं। हबीब जब ये खत तुम्हें पहुंचे तो तुम्हें मेरी माँ का वास्ता। हबीब अपनी जान को अजीज ना समझना, हबीब हुसैन के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, हुसैन बड़ा बागैरत है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। हबीब एक दोस्त के नाते, चूंकि हुसैन चाहता है कि अपने अच्छे इनामात को अपने दोस्तों में तकसीम करूं, हबीब शहादत बट रही है हुसैन के, हुसैन तुम्हें चाहता है। अरे मेरे दोस्त, मुझे नरगए आदा में घेर लिया है और मैं करबला में गिर गया हूं, फौज पे फौज आ रही है, हबीब मेरे पास चले आओ तो मेरी कुव्वत दिल और बढ़ जाए। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हालात को देखा और फिर जब ये खत मिला, अपनी जोजा का इम्तिहान लिया। तारीख लिखती है कि एक मरतबा मुस्लिम इब्ने औसजा हबीब के घर आए, हबीब क्या बात है, कोई मसला पेश आया है? हबीब ने कहा, मेरे आका का खत आया है। कहा आका का खत आया है? मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, हबीब मैं तो चला हुसैन की नुसरत के लिए, आप क्या सोचते हैं? हबीब ने कहा, मैं भी आ रहा हूं क्योंकि कूफे के हालात ऐसे नहीं है, मौत का कोई गम नहीं है, हम नहीं चाहते कि नुसरत हुसैन से पहले हम मार दिए जाएं, लिहाजा हम चाहते हैं कि हम सबको कूफे के बाहर मेरी जमीन पर
ملاقات کرتے ہیں. عزیزان گرامی, مسلم ابن اوسجا نے عجیب کارنامہ انجام دیا, اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کر آئے اور ان کی زوجہ نے کہا, اے مسلم ابن اوسجا, میں نے بچوں کو آراستہ کر دیا ہے, اگر راستے میں حملہ ہوا تو میں بھی جنگ کروں گی, میرے بچے بھی جنگ کریں گے اور تم کربلا کے لیے نکل جانا. عزیزان گرامی ہمارے لاکھوں سلام ہو, عزیزان گرامی ہمارے لاکھوں سلام ہو حبیب پر. حبیب اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اور کوفے کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ, میں آ رہا ہوں. حبیب ابن مزاح جو ہے تاریخ لکھتی ہے کہ اپنے احوال کو بدلنے کے لیے حبیب نے خضاب خریدا. خضاب خریدنے کے بعد چاہا کہ داڑھی پر لگائیں, لیکن آپ نے کہا نہیں, اب تو یہ داڑھی جو ہے خون سے رنگین ہوگی. اے میرے حبیب, اے میرے حسین, حبیب آ رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب غلام نے دیکھا کہ آقا نہیں آئے تو ایک مرتبہ گھوڑے کو روتے ہوئے دیکھا. غلام کہتا ہے, اے میرے آقا کے گھوڑے, میں جانتا ہوں تو کس لیے گریہ نہیں کر رہا, تو چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے حسین کی تو بھی نصرت کر دے. اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا. یہ گھوڑے سے بات کر رہے تھے. حبیب اپنے تماچے مارے, کہا آقا میرے آقا پر کیا وقت آ گیا ہے, اے آقا آپ پہ کیا وقت آ گیا ہے کہ غلام اور جانور آپ پر گریہ کر رہے ہیں. حبیب نے گھوڑے کو ایڑ دی اور کربلا کی طرف تیار ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے 12 علم بنائے تھے جو 12 سرداروں کو دینے تھے. سب علم تو مل گئے, ایک علم باقی تھا. لوگوں نے کہا مولا یہ ایک علم اضافی بن گیا ہے. امام نے فرمایا نہیں, اس کا لینے والا آج آنے والا ہے. لہذا کہا کہ آقا کون آنے والا ہے. تھوڑی دیر میں گرد و غبار اٹھی, لوگ نعرہ تکبیر کے بلند ہو گئے. دیکھا کوئی آ رہا ہے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا, کوئی آ رہا ہے. امام نے کہا کہ عباس اس علم کو لاؤ, اس علم کو لینے والا آ گیا ہے. میرا آقا آگے بڑھا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے استقبال کے لیے. حبیب نے کیا دیکھا کہ بیچ میں امام کھڑے ہیں, غازی عباس کھڑے ہیں, اونا محمد کھڑے ہیں, علی اکبر کھڑے ہیں, بنی ہاشم سے بن سجا ہوا ہے. حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور اپنے دوست کے قدموں میں گر گئے. حسین, حسین یہ کیسے ہو گیا میرے آقا, آپ کو ان لائنوں نے گھیر لیا, مجھے اجازت دیں تاکہ میں جنگ کروں. امام فرماتے کہ حبیب یہ علم لو. ارے تم تو میرے سپاہ سالاروں میں شمار کیے جاتے ہو. ایک مرتبہ جب حبیب کو دیکھا, حبیب جنگ فن کے بڑے ماہر تھے, علی مرتضیٰ کے خاص شاگرد تھے. ایک مرتبہ عباس سے کہا کہ عباس ذرا کل کی جنگ کا نقشہ تو دکھاؤ, کیا ہماری حکمت عملی ہوگی. جناب غازی نے کہا کہ حبیب, اے چچا حبیب, یہ نقشہ ہے, آپ دیکھیے. ایک مرتبہ نقشے کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا اور گریہ کیا, عباس کو گلے لگایا. عباس میں سمجھ گیا تم علی کے شاگرد ہو, علی کے شاگرد ہو. خدا کی قسم اگر ہم اس حساب سے لڑتے ہیں تو کوئی میرے آقا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. عباس یہ علاقہ تم سنبھال لینا, اس علاقے کو حبیب پہرا دے گا, کوئی عجب نہیں کہ کوئی حملہ کر دے. عزیزان گرامی تمام مال ہو گئے, امام کے تمام کارنامے انجام پا گئے, لیکن مولا نے اس نقشے کو مسترد کر دیا کہ حبیب ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تو حق و باطل کی جنگ کا, ہم تو باطل کی نقاب اٹھانے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا بس حبیب ابن مظاہر تاریخ لکھتی ہے, ایک مرتبہ صبح عاشور یہ بوڑھا تیار ہو گیا. اپنی کمر پہ اس نے جو ہے اپنے پٹے کو باندھا, پیشانی پر اپنے رومال کو باندھا. حبیب امام حسین علیہ السلام کی طرح ہیں, یہی عمر اور سن و سال ہے. عزیزانِ گرامی یہ جوان ہو کر حسین کی خدمت میں آ گئے. آقا میں بوڑھا تو نہیں لگ رہا ہوں, آقا میں بوڑھا تو نہیں لگ رہا ہوں. ایک مرتبہ سب گریہ کرنے لگے, حبیب یہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ آقا میں تیار ہو گیا ہوں, مجھے رن کی اجازت دے دیجئے. اے میرے بچپن کے دوست, میرے آقا, مجھے رن کی اجازت دے دیجئے. تاریخ لکھتی ہے حبیب ابن مظاہر کو رن کی اجازت دی. حبیب ابن مظاہر نے جانے کے بعد رجز پڑا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب آپ نے رجز پڑا ہے تو 23 فوج شام سے نکل کر حسین کی طرف آ گئے ہیں. اللہ اکبر, حبیب ابن مظاہر نے ان سب کو سپرد آقا کیا. اس کے بعد میدان قتال میں آئے. جو نہیں جانتا ہے مجھے جان لے, میں کوفے کا بوڑھا شیر ہوں, کون مجھے نہیں جانتا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ تمام کے تمام لوگوں نے جناب حبیب ابن مظاہر کو گھیرنا چاہا. گفتگو ہوئی, حبیب ابھی بھی موقع دیتے ہیں, چلے جاؤ, تم اسدیوں کے سردار ہو, قافلہ اسدی کے سردار ہو. ایک مرتبہ
تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا، خبردار میرے آقا کی محبت کو مجھ سے چھیننے اور امتحان لینے کی کوشش نہ کرنا۔ بس حبیب ابن مظاہر میدان قتال میں گھر گئے، حسین دور سے کھڑے ہوئے اس بوڑھے شہر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر نظر نہیں آئے، گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ لوگوں نے حبیب ابن مظاہر پر زخم لگانے شروع کیے، ہر شخص آتا جاتا تھا، تلوار کا وار حبیب پہ کرتا جاتا تھا، آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین نے فرمایا، حباس چلو میرا بچپن کا دوست۔ تاریخ لکھتی ہے حسین جب میدان قتال میں آئے ہیں، اپنے آپ کو حبیب پر گرا لیا، اے میرے بچپن کے ساتھی حبیب، یہ نہ سمجھنا اس دنیا سے چلے گئے، اے میرے دوست، ارے عصر تک ہم بھی تمہارے ساتھ آتے ہیں۔ حبیب نے ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، مسلم ابن اوسجا کو دیکھا اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، ارے میرے آقا کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے آقا کو تنہا نہ چھوڑنا، ارے یہ میرا بڑا عزیز دوست ہے، یہ میرے رسول کا نواسا ہے، آقا شرمندہ ہوں، اگر ہمت ہوتی تو میں پھر نرغے آداب میں چلا جاتا اور آپ کی طرف سے جانساری کرتا۔ تاریخ لکھتی ہے حسین نے ابھی کے جنازے کو کلیجے سے لگا لیا اور بہت دیر تک گریہ کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، حبیب کے لاشے کو امام مقتل سے اپنے جنگ گنج شہدہ میں لے کر آئے، لانے کے بعد لٹایا، زینب اولیاء مقام نے حبیب کا ماتم کیا، حسین کی تمام عورتوں نے حبیب کا ماتم کیا۔ تاریخ لکھتی ہے گنج شہدہ میں حبیب کو لٹانے کے بعد حسین اتنی دیر تک روتے رہے، اے حبیب ابن مظاہر، مجھے تیری دوستی پر ناز ہے کہ اس دیار غربت میں زہرا کے لال کی آواز پہ لبے کہنے والے حبیب، روز محشر میری ماں تیری حمایت کرے گی۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بقضائہ تسلیما لعمرہ، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، بالخصوص پاکستان میں اور جس جن ممالک میں حسین کی عذاب برگزار ہو رہی ہے، میرے معبود ان کی حفاظت فرما۔ میرے معبود اگر کوئی قابل اصلاح ہے تو ان کی اصلاح فرما، اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری قوت ایمان کو مزید ترقی عطا فرما۔ میرے معبود حسین کی زندگی حسین کے راستے پر چلنے میں ہماری زندگیوں کا خاتمہ فرما، در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہماری نسلوں کو بچا لے، ہماری نسلیں تیرے حوالے۔ میرے معبود تجھے حسین کا واسطہ، تجھے حبیب ابن مظاہر کی ذات کا واسطہ۔ میرے معبود تمام مومنین کی حفاظت فرما، ان ادارے اسلامیہ کی حفاظت فرما، ان کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام برادران جو خدمت انجام دے رہے ہیں، جو پارکنگ میں کھڑے ہوئے تمام عزاداروں کے لیے آسانی فراہم کر رہے ہیں، میرے معبود تجھے حبیب ابن مظاہر کا واسطہ، ان کی تمام مطلوبات شریعہ کو قبول فرما، ان کے تمام مشکلوں کو دور فرما، ان کو حسین کے محبان میں قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ علماء اعلام، مراجع کرام، رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا